का था, रूह वही, रूप नया।
कुएं का राज के भाग दो में आपने सुना कि किस तरह नवाब रशीदुज्जमा के सौतेले भाई को कुएं की जगत पर बेहोश पाया गया और किस तरह वो तारिक से डरा हुआ जान पड़ता था, जिसने गजाला के शक को और मजबूत कर दिया और इसलिए गजाला इंस्पेक्टर फरीदी की मदद लेने के लिए शहर की ओर रवाना हो गई। क्या वो उसको दाराब नगर लेकर आ पाई? क्या इंस्पेक्टर फरीदी और हमीद ने इस राज का पता लगा पाया? सुनिए भाग तीन में। खाने की मेज पर ज्यादातर खामोशी ही रही। फरीदी किसी सोच में डूबा हुआ था। उसे इस हाल में देखकर हमीद का माथा ठनका। फरीदी का इस तरह सोच में डूब जाना खास मौकों पर ही दिखाई देता है। खाना खाने के बाद थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें होती रहीं, फिर गजाला उठते हुए बोली, अब अच्छा तो मैं चलती हूँ, स्टेशन पर आपसे 3 बजे मिलूंगी। बहुत अच्छा, फरीदी ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा और बैठ गया। वो इस तरह सोच में डूबा हुआ था कि गजाला को विदा करने के लिए बरामदे तक भी न गया। हमीद और शहनाज उसे गेट तक पहुंचाकर लौट आए। तो क्या आप लोग कहीं जा रहे हैं? शहनाज ने फरीदी से पूछा। हाँ, एक जरूरी काम है। परसों मेरा बर्थडे है, मैं तो आप लोगों को दावत देने आई थी। मगर तुमने इस वक्त पर दावत दी है जब मैंने किसी दूसरे से वादा कर लिया है। अरे पहले क्यों नहीं बता दिया था? मौका ही कहाँ मिला, शहनाज ने कहा और हमीद की तरफ देखने लगी। जी हाँ, ये भी मेरे साथ ही जा रहे हैं, फरीदी बोला। वापसी कब तक होगी? ये अभी तो नहीं बता सकता। शहनाज थोड़ी देर मुंह लटकाए बैठी रही और फिर उठकर बाहर चली गई। हमीद को फरीदी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो शहनाज के पीछे पीछे चलने लगा। अरे भाई बताओ, अब मैं क्या करूं, हमीद ने शहनाज से कहा। शहनाज कोई जवाब दिए बिना सड़क पर होली और हमीद लौट आया। अरे एक बहुत ही दिलचस्प केस, फरीदी मुस्कुरा कर बोला। मुझे छुट्टियों में इस किस्म की दिलचस्पियों से नफरत है, हमीद ने मुंह बनाकर कहा। बको मत, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, फरीदी ने कहा। जी हुक्म पर अमल करूंगा। अरे यार ये बात नहीं है प्यारे, चलो बस मजा आ जाएगा, फरीदी उसका कंधा थपकते हुए बोला। हमीद खामोश रहा। अरे भाई तुम्हारे इश्क से तो मैं तंग आ गया हूँ, फरीदी ने कहा। खुदा करे कि आपको भी किसी से इश्क हो ही जाए, हमीद ने जल कर कहा। उसी दिन खुदकुशी कर लूंगा बरखुरदार, फरीदी अपने सीने पर हाथ मारकर बोला। अच्छा तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपको किसी से इश्क हो गया है। उफ, तो तुम मुझसे इतना तंग आ गए हो। खैर जाकर अपना सामान ठीक करो, हमें 3 बजे की गाड़ी से दाराब नगर जाना है। हमीद खामोशी से अपने कमरे की तरफ चला गया और फरीदी ने सिगार सुलगा कर टहलना शुरू कर दिया। गजाला स्टेशन पर दोनों का इंतजार कर रही थी। फरीदी और हमीद वक्त पर पहुंच गए। उनका सामान फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में रख दिया गया था। ट्रेन पर गजाला ने फिर वही बात छेड़ दी। हमीद को इस बारे में अभी तक कुछ मालूम नहीं था। बस उसको चूंकि जाना पड़ रहा था, इसलिए उसने अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए फरीदी से ये तक न पूछा कि आखिर दाराब नगर जाने की वजह क्या है। लेकिन ट्रेन पर जब इसकी बात चलने लगी तो उसकी दिलचस्पी भी बढ़ गई। उसकी फितरत भी बड़ी अजीब थी। काम के मौकों पर वो हमेशा ऐसी बात करने लगता था जैसे वो बहुत ही निकम्मा और कामचोर किस्म का आदमी हो, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। जब वो किसी काम में लग जाता था तो वो उसे पूरी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाता था। खतरनाक मौकों पर देखने में वो एकदम डरपोक किस्म का मजाकिया बंदा लगता था, लेकिन खुद उसके दिल की गहराइयों में खौफ की एक छोटी सी लहर भी ना होती थी। फरीदी उसकी फितरत को अच्छी तरह जानता था और ये भी कि उससे किस तरह काम लिया जा सकता है। गजाला ने तारिक और उसके अजीबोगरीब नेवले का जिक्र छेड़ रखा था। मालूम नहीं क्यों फरीदी की मौजूदगी में उसे तारिक की खौफनाक आंखें याद नहीं आईं। मैंने भी ऐसा नेवला आज तक नहीं देखा, हमीद ने कहा। यकीनन वो एक अजूबा चीज है, ब्राजील के पुराने लोग उसे शाकी कहते हैं और वो बहुत अदब का पात्र है, क्योंकि वो उनका एक देवता है और एक खास त्योहार के मौके पर उसकी पूजा भी की जाती है। यकीनन तारिक को उसे पाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। फरीदी सिगार का कश लेकर खामोश हो गया। मेरा ख्याल है कि आप इस नेवले के बारे में तारिक से भी ज्यादा जानते हैं, गजाला ने कहा। फरीदी ने कोई जवाब ना दिया, वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी उसने चौंक कर कहा, क्या ये वही तारिक तो नहीं जो दुनिया की बहुत सारी भाषाएं जानता है? हाँ, लेकिन आप उसे कैसे जानते हैं? फरीदी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें ट्रेन के बाहर फैले हुए अंधेरे में घूर रही थी। हमीद अच्छी तरह जानता था कि फरीदी ऐसे मौकों पर बात करना पसंद नहीं करता जब वो किसी गहरी सोच में हो, इसलिए उसने गजाला को अपनी बातों में लगा लिया। वो उससे सारी जानकारी ले लेना चाहता था। फरीदी फिर चौंका, हमीद, क्या तुम्हें वो धर्मपुर के जंगलों का भूत याद नहीं? हाँ याद है, लेकिन ये मामला उससे अलग मालूम होता है। क्यों? इसलिए कि हम सारे वाकयात शायद अपनी आंखों से देख सकेंगे। भला दीवारों से जानवरों की आवाजों के आने का क्या मतलब है? और फिर जानवरों की मौतें, कुएं से चिंगारी निकलना तो खैर ऐसी कोई खास बात नहीं है। सब कुछ हो सकता है, फरीदी ने धीरे से कहा और बुझा हुआ सिगार सुलगाने लगा। जानवरों के बाद अब आदमी का नंबर आने वाला है, फरीदी ने सिगार का एक लंबा कश लेकर कहा। गजाला चौंक पड़ी, क्या मतलब? घबराइए नहीं, आप बिल्कुल ठीक वक्त पर मेरे पास पहुंची हैं, फरीदी ने कहा। नवाब साहब पुराने ख्याल के आदमी हैं, उनका जहन भूतों के आगे नहीं बढ़ सकता। वे क्या जाने कि साइंस के इस दौर में मामूली आदमी भी इस किस्म के चमत्कार दिखा सकता है। खैर, ये तो मैं यकीन से कह सकती हूं कि ये साइंस का ही कोई करिश्मा है। अलबत्ता ये जरूर कह सकती हूं कि इसमें किसी आदमी का हाथ है जो अपनी खतरनाक ताकतों से काम ले रहा है। शायद आपका इशारा तारिक की तरफ है, फरीदी ने उसे घूरते हुए कहा। गजाला ने कोई जवाब नहीं दिया। इस बातचीत के बाद फिर खामोशी छा गई और फरीदी आसमान की तरफ घूरने लगा। कुछ अजीब सा समा था। ठंडी हवा के झोंके सुबह होने की खबर दे रहे थे। हमीद ऊंघने लगा था। गजाला की खूबसूरत आंखें भी नींद के दबाव से बोझिल हो रही थीं। सिर्फ फरीदी के चेहरे पर ताजगी नजर आ रही थी, जैसे वो रात भर सोते रहने के बाद सूरज निकलने से पहले उठ गया हो। थकान के आसार भी मालूम तक नहीं होते थे, अलबत्ता उसकी आंखें गहरे सोच विचार का पता दे रही थी। लगभग 6 बजे वे दाराब नगर पहुंच गए। कोठी के गेट में दाखिल होते ही गजाला का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। पोर्टिको में 2-3 कांस्टेबल खड़े थे और कुछ इस किस्म की परेशानी की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई हादसा हो गया हो। फरीदी और हमीद को छोड़कर गजाला एकदम से भागी। वे दोनों टैक्सी पर से सामान उतरवा रहे थे कि गजाला दौड़ती हुई वापस आई। लाश लाइब्रेरी में, लाश। किसकी लाश? फरीदी ने इत्मीनान से पूछा।
अब्बा जान के प्राइवेट सेक्रेटरी की।
ओह, आखिर वही हुआ जिसका खटका था, फरीदी ने सामान वहीं छोड़कर आगे बढ़ते हुए कहा। गजाला उसका हाथ पकड़े तेज कदमों से उसे कोठी की तरफ ले जा रही थी। कई कमरों से गुजरते हुए वे लाइब्रेरी के बरामदे में पहुंचे, जहां घर के सारे नौकर इकट्ठा थे और दोनों को आता देखकर इधर उधर हट गए। लाइब्रेरी में 2 सब इंस्पेक्टर, 1 हेड कांस्टेबल, तारिक और नवाब साहब खड़े थे। खिड़की के करीब रखी हुई कुर्सी के पास एक आदमी इस तरह पड़ा था जैसे वो उसी कुर्सी पर बैठे बैठे जमीन पर लुढ़क गया हो। उसका हाथ अभी तक कुर्सी पर था।
अरे फरीदी मियां, भाई ठीक वक्त पर आए,
नवाब साहब उसकी तरफ बढ़ते हुए बोले। ये वाकया कब हुआ?
मालूम नहीं, लेकिन मुझे एक नौकर ने सुबह खबर दी।
फरीदी ने कुछ सोचते हुए सिर हिलाया।
मैं क्या बताऊं कि मैं किन मुसीबतों में फंस गया हूं।
मुझे गजाला साहिबा की जबानी सब कुछ मालूम हो चुका है।
तो क्या गजाला तुम्हारे पास ही गई थी? उसने बड़ी अक्लमंदी का काम किया, मेरी तो अक्ल ही मारी गई है।
आपकी तारीफ? एक सब इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर पूछा।
अरे आप इन्हें नहीं जानते? ये डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के इंस्पेक्टर फरीदी हैं।
ओह, तब तो फिर हम लोगों की यहाँ कोई जरूरत नहीं, सब इंस्पेक्टर ने फरीदी से हाथ मिलाते हुए कहा। अरे आप मुझे बेकार शर्मिंदा कर रहे हैं, फरीदी ने कहा और लाश की तरफ देखने लगा। कोई जख्म नहीं है, कोई निशान नहीं है, गर्दन भी हमने गौर से देख ली है, मगर समझ में नहीं आता कि मौत कैसे हुई, सब इंस्पेक्टर ने कहा। जरा मैं भी देख लूं, फरीदी ने लाश के करीब झुकते हुए कहा और बड़ी देर तक आतिशी शीशे से लाश का मुआयना करता रहा। आप ठीक कहते हैं, कोई निशान नहीं है, आपने अभी तक किसी डॉक्टर को नहीं बुलवाया, बस आ ही रहा होगा। क्या ये रात में बाहर बैठा करता था? फरीदी ने नवाब साहब से पूछा।
नहीं, कल ही मैंने उसे एक किताब तलाश करने के लिए यहां भेजा था और इत्मीनान हो गया था कि वो किताब तलाश करके अपने कमरे में आ गया होगा।
शायद वो इसी कुर्सी पर बैठकर कुछ पढ़ने लगा होगा, फरीदी ने कहा। और अचानक कोई खौफनाक चीज देखकर दिल की हरकत बंद हो गई हो, तारिक ने कहा। फरीदी उसे घूरने लगा। और वो खौफनाक चीज क्या हो सकती है? फरीदी ने ऐसी आवाज में कहा कि तारिक हड़बड़ा गया। अभी आप ही ने तो फरमाया कि आपको सब हाल मालूम हो चुका है, तारिक ने अपने नेवले को कंधे से उतारकर गोद में लेते हुए कहा। ये शाकी आपको कहां से मिला? फरीदी ने पूछा। ओह, तो आप इसका नाम पहचानते हैं? तारिक ने चौंक कर कहा। अरे इन देवता महाराज को कौन नहीं जानता? तारिक फरीदी को हैरत से देखने लगा। इतने में डॉक्टर आ गया। आप मुआयना कर सकते हैं, हम लोग देखभाल चुके हैं, फरीदी ने कहा। डॉक्टर काफी देर तक लाश का मुआयना करता रहा।
वेल, मौत हुए तो 4-5 घंटे हो चुके हैं,
डॉक्टर ने कहा। मौत की वजह? फरीदी ने पूछा।
वेल, अचानक दिल की हरकत बंद हो गई है,
डॉक्टर ने कहा। देखा, देखा आपने? तारिक बीच में बोला। क्या इसे कोई दिल की बीमारी थी? फरीदी ने तारिक की बात को नजरअंदाज करते हुए नवाब साहब से पूछा।
हाँ, उसे काफी दिनों से दिल की बीमारी थी।
तब तो मेरे ख्याल से हमें वापस ही चलना चाहिए, इंस्पेक्टर साहब बोले। ठहरिए, अभी शक खत्म नहीं हुए, फरीदी कुर्सी से उठते हुए बोला। वो खिड़की के करीब खड़ा होकर कुछ सोचने लगा। नवाब साहब, क्या यहाँ रोज रात में कोई बैठा करता है? फरीदी ने पूछा।
मैं खुद रोजाना 3-4 घंटे यहाँ बैठकर पढ़ता हूँ।
ठीक, फरीदी ने मेज पर पड़ी हुई ट्रे जैसी टोपी उठाते हुए कहा। शायद ये टोपी इसी की है।
नहीं, मेरी है।
आपकी? वो खिड़की के बाहर देखते हुए बोला।
हाँ, इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है?
अच्छा, तो आप सिर में कौन सा तेल लगाते हैं?
कोई नहीं,
नवाब साहब अपने गंजे सिर पर हाथ फेरते हुए झेप कर बोले। माफ कीजिएगा, ये बहुत जरूरी सवाल था, फरीदी ने मेज पर टोपी रखते हुए कहा। वो बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। ऐसा मालूम हो रहा था कि वो कमरों में दूसरों की मौजूदगी भूल गया हो। फरीदी की आंखें दबे हुए जोश का इजहार कर रही थीं। एक बार रुक कर उसने सिगार सुलगाया और 2-3 लंबे कश लेने के बाद फिर टहलने लगा। खिड़की के करीब जाकर उसने इधर उधर देखा और नवाब रशीदुज्जमा के सामने खड़ा होकर उन्हें घूरने लगा। एक बात समझ नहीं आती कि वो इतनी रात गए किताब क्यों ढूंढता रहा? क्या इसके बारे में आपका कोई सख्त हुक्म था?
बिल्कुल नहीं, मैंने उसे शाम को कहा था कि किसी भी वक्त मेरी किताब ढूंढ दे, मैंने उसे ये नहीं कहा था कि वो रात को ही ढूंढे।
क्या आप कल पहले की तरह यहां आए थे?
नहीं, जब से ये हादसे होने लगे हैं मैंने रात को यहां बैठना करीब करीब छोड़ दिया है। अगर कभी आता भी हूं तो 10 बजे से पहले उठ जाता हूं।
कल रात को आए थे या नहीं?
कल शाम से ही मेरी तबीयत भारी थी, इसलिए मैंने पढ़ना मुनासिब नहीं समझा।
ठीक, फरीदी ने कहा और टहलने लगा। अरे आप बेकार परेशान हो रहे हैं,
ये खुला हुआ शैतानी मामला है,
सब इंस्पेक्टर बोला। फरीदी ने उसे हाथ उठाकर चुप रहने का इशारा किया। पुलिस वाले मुस्कुरा कर रह गए। सिर्फ हमीद और गजाला खामोशी के साथ फरीदी की बदली हुई हालत का जायजा ले रहे थे। तारिक के होठों पर मुस्कुराहट नाच रही थी। फरीदी खिड़की के पास खड़ा होकर कुछ देर सोचता रहा, फिर नवाब साहब की तरफ मुड़कर बोला, आप इसी कुर्सी पर बैठकर पढ़ते हैं ना?
हाँ।
करीब करीब हमेशा? नवाब साहब ने सिर हिलाया। वे फरीदी के उल्टे सीधे सवालों से कुछ उकताए हुए नजर आ रहे थे। अच्छा एक बात और, क्या आप पढ़ते वक्त एक बार पानी पीने के आदी हैं?
हाँ, लेकिन तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ?
अभी बताता हूँ। फरीदी ने एक बार फिर खिड़की की करीब जाते हुए बोला। उसने खिड़की से बाहर सिर निकाल कर इधर उधर देखा और नवाब साहब के पास वापस लौट आया। मैं आपको एक तकलीफ देना चाहता हूँ।
हाँ हाँ कहो।
जरा दो मिनट के लिए इस कुर्सी पर तो बैठिए। फरीदी ने उसे लाश के करीब वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। नवाब साहब का हैरत से मुंह खुला रह गया। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन ये जरूरी है। नवाब साहब कुर्सी पर बैठ गए। अब ये जरा टोपी पहन लीजिए। फरीदी ने मेज पर रखी हुई टोपी की तरफ इशारा किया। सब इंस्पेक्टर हंसने लगा। नवाब साहब भी नाराज हुए, लेकिन फरीदी की कड़ी नजरों ने तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए चेहरों पर एक बार फिर संजीदगी फैला दी। नवाब साहब ने टोपी पहन ली। मैं बस एक मिनट में आया, फरीदी ने हमीद का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाते हुए कहा। दोनों लाइब्रेरी के पीछे आकर खड़े हो गए। देख रहे हो हमीद, खिड़की से सिर्फ नवाब साहब की टोपी दिखाई दे रही है और उनकी पीठ हमारी तरफ है, और इस खिड़की की ऊंचाई भी तुम देख रहे हो।
हाँ, तो अब क्या?
हमीद की आंखों से हैरत की झलकियां दिख रही थीं। तुम यहीं ठहरो और उनका ख्याल रखना। फरीदी ने खिड़की के नीचे पड़े हुए टूटी हुई सुराई के ठीकरों की तरफ इशारा करते हुए कहा। हमीद उसे हैरत से देखने लगा। इन पर नजर रखना, इन्हें कोई छूने न पाए, फरीदी ने कहा और लाइब्रेरी में चला गया। नवाब साहब उसकी तरफ देखने लगे। अब उठ जाइए, यहाँ आपका काम खत्म। नवाब साहब उठ गए। हर एक की हैरान निगाहें फरीदी के चेहरे पर लगी हुई थी। अब आप लोग अगर एक दिलचस्प तमाशा देखना चाहें तो आइए मेरे साथ। दीवान जी, आप यहीं लाश के पास रहिए। हेड कांस्टेबल के अलावा सब लोग फरीदी के साथ लाइब्रेरी के पीछे आ गए। हमीद अभी तक खड़ा ठीकरों की निगरानी कर रहा था। फरीदी ने इधर उधर देखा। एक कमरे की खिड़की में लटके हुए पीतल के बड़े से गोले में एक भारी भरकम तोता बैठा ऊंघ रहा था। उसके पैर में सुनहरे रंग की एक जंजीर पड़ी हुई थी। जंजीर से दूसरा सिरा गोले पर लटका था। बहुत खूबसूरत तोता है, फरीदी ने तारीफ करते हुए कहा। नवाब साहब उसका मुंह देखने लगे। क्या आप इसे यहां मंगवा सकते हैं? फरीदी ने नवाब साहब से पूछा।
हाँ क्यों नहीं,
नवाब साहब ने कहा, लेकिन उनकी नजरों में नफरत की झलकियां दिखाई दे रही थीं। फरीदी ने इसे महसूस किया, लेकिन सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। नवाब साहब के इशारे पर एक नौकर तोते को खिड़की से उतार लाया। फरीदी खिड़की के नीचे पड़े हुए ठीकरों की तरफ बढ़ा। एक बड़ा सा ठीकरा जिसमें थोड़ा सा पानी था उठाकर तोते के करीब लाया और उसकी चोंच से लगा दिया। तोता पानी पीने लगा। अभी वो पानी पी ही रहा था कि तारिक का नेवला उछलकर फरीदी के हाथ पर आ गिरा और ठीकरा उसके हाथ से छूट गया। फरीदी ने मुस्कुराकर तारिक की तरफ देखा। मुझे बड़ा अफसोस है जनाब, तारिक ने माफी मांगते हुए कहा।
खेल तो वाकई दिलचस्प है,
नवाब साहब व्यंग्यात्मक अंदाज में बोले। देखते जाइए, असल खेल तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, फरीदी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। जरा खाली बोतल तो मंगवाइए, फरीदी ने नवाब साहब से कहा। फरीदी ने तोते को अपने हाथों में लिया। उसकी तेज निगाहें तोते का गहरा जायजा ले रही थी। हमीद, बाकी ठीकरों का पानी एहतियात से इस बोतल में डाल लो, फरीदी ने बोतल नौकर के हाथ से लेकर हमीदी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। हालांकि यह मामला बहुतों की समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हर एक की नजर तोते की तरफ लगी हुई थी। अचानक तोते ने पंख फड़फड़ाने शुरू किए और देखते ही देखते लुढ़क कर जंजीर में झूल गया।
ये क्या?
नवाब साहब के मुंह से बेअख्तियार निकला और उन्होंने झपट कर फरीदी के हाथ से उसे ले लिया।
ये तो मर गया।
फरीदी उनकी बात अनसुनी करके सब इंस्पेक्टर की तरफ मुड़ा। दरोगा जी, आप सेक्रेटरी की लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा सकते हैं और साथ ही ये मुर्दा तोता भी।
तो क्या?
सब इंस्पेक्टर इसके आगे कुछ ना कह सका। जी हाँ, इस जहरीले तोते की भी जांच करवाइए, क्योंकि सेक्रेटरी की मौत का जिम्मेदार जहर है, फरीदी ने इत्मीनान से कहा।
जहर?
नवाब साहब के मुंह से बेअख्तियार निकला। जनाबे आला, और ये भी साफ रहे कि जहर देने वाले का निशाना खुद आप थे। वो तो कहिए कि बस सेक्रेटरी की मौत आई थी।
मैं?
जी हाँ।
मगर कैसे?
बहुत ही मामूली बात है, आइए लाइब्रेरी में चलकर समझाऊं। फरीदी ने तारिक की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। सब लोग फिर से लाइब्रेरी में चले आए। फरीदी की बात सुनकर गजाला की हालत बिगड़ रही थी। सेक्रेटरी की मौत का जिम्मेदार शायद आपकी ये टोपी है, फरीदी ने कहा।
अरे भाई, तुम पहेलियां बुझवा रहे हो, साफ साफ कहो, मैं दिल का मरीज हूं।
ठहरिए, अभी आपने मुझे बताया कि आप कोई तेल इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जरा इस टोपी के अंदर का हिस्सा सूंघिए। नवाब साहब ने टोपी को सूंघा और सिर हिलाने लगे। ऐसी ही खुशबू उसके सिर में भी मौजूद है, फरीदी ने लाश की तरफ इशारा करते हुए कहा। रात पढ़ते वक्त शायद उसने आपकी टोपी पहन ली थी। मैंने आपको ये टोपी पहनाकर बस ये देखना चाहा था कि बाहर जाकर आप कैसे दिखाई पड़ते हैं। मुझे सिर्फ आपका सिर नजर आ रहा था और आपकी पीठ मेरी तरफ थी। जहर देने वाला समझा शायद आप ही लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं। मैंने आपसे पढ़ते वक्त बार बार पानी के बारे में पूछा था और मेरा ख्याल सही निकला। मैं उस खिड़की पर अनगिनत गोले देखकर इस नतीजे पर पहुंचा था कि यहां सुराही रखी जाती है और गोले उसकी भीगी हुई पेंदी के निशान के अलावा कोई और चीज हो ही नहीं सकते। कातिल शायद आपकी इस आदत को अच्छी तरह जानता था। उसने पीछे ही से हाथ बढ़ाकर यहां रखी हुई सुराही में जहर डाल दिया। ये तो आपने देखा ही है कि जहर कितना असरदार साबित हुआ है। सिर्फ 2 मिनट में तोते की जान निकल गई। आपका सेक्रेटरी भी शायद बहुत ज्यादा सिगरेट पीता था, जैसा कि मेज पर रखे हुए एश्ट्रे से मालूम होता है, और गर्मियों में सिगरेट पीने के बाद प्यास जरूर लगती है। उसने सुराही का पानी पिया और फिर तो आप जानते ही हैं। कातिल बाद में अपनी इस हरकत को देखने आया और जल्दी में सुराही को हाथ मारकर नीचे गिरा दिया। उसकी जल्दबाजी किसी गलती के अचानक एहसास का ही नतीजा हो सकती है। उसने ये भी नहीं सोचा कि सुराही के टूटने की आवाज से करीब के लोग भी जाग सकते हैं। फरीदी रुककर सिगरेट सुलगाने लगा। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि मरने वाला उस वक्त भी टोपी पहने हुए था, जब जहर देने वाले ने बाहर से देखा है तो? सब इंस्पेक्टर ने पूछा। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये मेरा अंदाजा है जो गलत भी हो सकता है, फरीदी ने कहा। बहरहाल नवाब साहब को एहतियात से काम लेना चाहिए। एक सेक्रेटरी की जान लेने के लिए इतना ऊधम मचाने की क्या जरूरत हो सकती है?
ऊधम से तुम्हारा क्या मतलब है?
नवाब साहब बोले। जानवरों की मौतें, दरिंदों की आवाजें और आग उगलता हुआ कुआं, फरीदी ने कहा और सामने की दीवार पर नजरें गाड़ दी। वो कुछ सोच रहा था। तारिक अपने नेवले को कंधे पर बिठाए बेताबी से इधर उधर टहल रहा था। गजाला के चेहरे के उतार चढ़ाव से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो करीब करीब बेहोश होने वाली है। दरोगा जी, इस बोतल को सील कर दीजिए, फरीदी ने बोतल हमीद के हाथ से लेकर सब इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। उसी बोतल में हमीद ने टूटी हुई सुराही के ठीकरों का पानी इकट्ठा किया था। फरीदी नवाब साहब की तरफ मुड़ा। एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर इतनी रात गए वो लाइब्रेरी में बैठा क्या कर रहा था? डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 2:30 बजे उसकी मौत हुई। क्या वो आपके घर में होने वाले हादसों से परेशान नहीं था? मेरा ख्याल है कि यहाँ रात को तो कोई अपने पलंग से उठने की हिम्मत तक नहीं कर सकेगा।
तुम्हारा ख्याल बिल्कुल सही है,
फरीदी फिर ख्यालों में डूब गया। गजाला का दिल चाह रहा था कि वो बता दे कि उसने एक आदमी को रात में कुएं में उतरते देखा था, लेकिन तारिक सामने ही खड़ा था। उससे आंखें मिलते ही उसे अपना खून नसों में मानो जमता हुआ सा महसूस होने लगा। उसने ये बात फरीदी को भी नहीं बताई थी। न जाने क्यों उसका ख्याल आते ही वो खौफ से कांपने लगती थी। उसने उस वक्त तारिक के नेवले को फरीदी के हाथ से ठीकरा गिराते हुए भी देखा था। फरीदी ख्यालों में डूबा हुआ टहल रहा था, तभी सब इंस्पेक्टर की तरफ मुड़कर बोला, दरोगा जी, मेरे ख्याल से अब लाश उठवाने का इंतजाम किया जाए। बहरहाल अब आपको दूसरी रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी। फरीदी साहब, आप हकीकत में जादूगर हैं, सब इंस्पेक्टर ने कहा और फरीदी ने कोई जवाब न दिया। सब इंस्पेक्टर लाश उठवाने का इंतजाम कर रहा था। थोड़ी देर बाद लाइब्रेरी में सिर्फ हमीद, फरीदी, गजाला, नवाब साहब और तारिक रह गए। फरीदी अभी तक ख्यालों में खोया हुआ था। टहलते टहलते वो किताबों की अलमारियों का जायजा लेने लगा। आपकी लाइब्रेरी बहुत शानदार है, वो नवाब साहब की तरफ मुड़कर बोला। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप लोग नाश्ता कब करेंगे, गजाला ने पूछा।
अरे हाँ भाई, लो 9 बज गए,
नवाब साहब ने चौंक कर कहा। अगर नाश्ता यहीं मंगवा लें तो बेहतर होगा, फरीदी ने कहा। गजाला उठकर बाहर चली गई। फरीदी टहलता हुआ खिड़की के पास आ गया। ये क्या तमाशा है, वो बाहर देखते हुए चौंक कर बोला। नवाब साहब और हमीद खिड़की के करीब आ गए। नवाब साहब का सौतेला भाई परवेज एक पहलवान की गोद में चढ़ा हुआ दूध पी रहा था और साथ ही साथ तुतला तुतला कर कुछ कहता भी जा रहा था।
ये तमाशा नहीं, मेरी बदनसीबी है।
क्या मतलब?
मेरा छोटा भाई परवेज, 8 साल हुए सिर में चोट लगने की वजह से इसका दिमाग खराब हो गया। कभी मुझे इस पर बहुत फख्र था, आज भी जब मैं उसकी लाइब्रेरी में जाता हूं तो आंसू निकल आते हैं। इतना काबिल और पढ़ा लिखा और उसका ये अंजाम। बर्लिन यूनिवर्सिटी से उसने फिलॉसफी में डॉक्टरेट की डिग्री ली थी और अब बिल्कुल बच्चों की सी जिंदगी बसर करता है।
फरीदी गौर से सुन रहा था और अचानक हमीद हंसने लगा। परवेज पहलवान की गोद से उतरकर तितली के पीछे घुटनों के बल दौड़ने लगा। हमीद के इस हंसने पर फरीदी ने उसे घूर कर देखा। वो नहीं चाहता था कि नवाब साहब का दिल दुखे। आपने ने किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाया, फरीदी ने नवाब साहब से पूछा।
अरे सब कुछ करके थक हार गया हूं भाई।
वाकई बड़े अफसोस की बात है, फरीदी ने कहा और उसके बाद खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद नाश्ते का सामान आ गया। सब लोग एक बड़ी सी मेज के पास बैठ गए।
समझ में नहीं आता कि जहर दिया किसने।
परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात बहुत जरूरी है। आप और गजाला काफी होशियार रहे, मुझे 100% यकीन है कि यह हमला आप पर ही हुआ था।
पर आखिर क्यों, वो कौन हो सकता है भला?
वही जिसने ये सब स्वांग रचाया है। इस ख्याल में ना रहिए कि ये कोई शैतानी मामला है। भाई गजाला ने जिस वक्त मुझे जानवरों की मौत के बारे में बताया था, उसी वक्त मैंने कह दिया था कि अब किसी आदमी का नंबर आने वाला है। नवाब साहब हैरान नजरों से फरीदी की तरफ देख रहे थे। जनाबे आला, आपका नेवला मुझे बहुत पसंद है, फरीदी ने तारिक से कहा। हाँ जी, शुक्रिया, तारिक मुस्कुरा कर बोला। जिस वक्त ये उछला था ना, मुझे यकीन हो गया था कि जरूर इस पानी में जहर मिला हुआ है। जी, मैं आपका मतलब नहीं समझा, तारिक चौंक कर बोला। इसकी इसी खासियत पर शदागा कबीले के लोग इसे देवता समझते हैं, फरीदी सिगार सुलगाता हुआ बोला। इस किस्म के खतरे की बू सूंघ लेना इसकी मामूली सी खासियत है। क्या आप कभी ब्राजील गए हैं, तारिक ने पूछा। हाँ, एक जमाने में मुझे पुराने खजानों की तलाश की खब थी। अच्छा, तारिक दिलचस्पी जाहिर करते हुए बोला। इसी सिलसिले में ब्राजील जाना हुआ था, फरीदी ने लापरवाही से कहा। लेकिन अफसोस कि मानाओस से 100 मील के आगे भी न जा सका। मानाओस? मानाओस? तारिक बेचैनी से बड़बड़ाता हुआ कुर्सी पर पहलू बदलने लगा। मानाओस से 100 मील के फासले पर पश्चिम की तरफ अमेजॉन नदी के उत्तरी किनारे पर काले पहाड़ों का सिलसिला जहां। अरे मगर मैं ये सब क्यों बक रहा हूं। अरे कोई बात नहीं, मुझे इस सब में काफी दिलचस्पी है, तारिक ने नेवले को कंधे से उतार कर गोद में बैठाते हुए कहा। फिर किसी और वक्त बताऊंगा। क्या आपको भी खजानों में दिलचस्पी है? नहीं नहीं, ऐसी कोई दिलचस्पी तो नहीं। अलबत्ता मुझे सैर करने का शौक जरूर है, तारिक ने कहा। खैर, ये शौक भी बुरा नहीं। फरीदी ने नवाब साहब की तरफ अचानक मुड़ते हुए कहा, मैं आपके सेक्रेटरी के बारे में कुछ मालूमात करना चाहता हूँ।
किस किस्म की मालूमात?
पहली बात ये कि वो आपके यहाँ कितने दिन से नौकरी कर रहा था।
अरे, उसकी तो परवरिश ही हमारे घर में हुई थी।
उसका कोई रिश्तेदार?
नहीं, कोई नहीं। बहुत पहले मुझे वो एक पुराने मंदिर के पास पड़ा हुआ मिला था। उस वक्त उसकी उम्र 2 साल से ज्यादा नहीं थी।
उसका कोई दुश्मन?
मेरा ख्याल है कि कोई नहीं, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा आदमी था।
क्या बता सकते हैं कि वो किस किस्म की किताबें पढ़ा करता था?
ये बताना तो मुश्किल है।
आपने कौन सी किताब ढूंढने के लिए उसे भेजा था?
एक किताब जो इसी इमारत के बारे में थी।
फरीदी अचानक उछल पड़ा। इस इमारत के बारे में? क्या आपने उसे पढ़ा है?
हाँ, एक दो बार कुछ पन्ने पढ़ने का इत्तेफाक हुआ था।
कोई खास बात थी उसमें?
जाहिर है कि अगर कोई खास बात होती तो दो ही एक पन्ने पढ़कर क्यों रह जाता।
ओ, खास बात तो जरूर थी, मगर खैर। अब ये बताइए कि अचानक आपको उसे तलाश करवाने की कौन सी जरूरत आन पड़ी? फरीदी ने पूछा। नवाब साहब फिर कुछ उकताए हुए से नजर आने लगे।
इन सवालों का हादसे से क्या ताल्लुक?
नवाब साहब ने पूछा। बहुत बड़ा ताल्लुक है। मेरे सवाल आपको बेकार जरूर मालूम हो रहे हैं, लेकिन मेरा काम करने का तरीका ही कुछ इस तरह का है।
मैंने उस किताब का बयान तारिक से यूं ही बातचीत के दौरान किया था। उन्होंने उसे देखने की ख्वाहिश जाहिर की थी।
क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप उसे क्यों देखना चाहते थे? फरीदी अचानक तारिक की तरफ मुड़कर बोला। बात यह है कि मुझे पुरानी इमारतों में दिलचस्पी है। मैंने सोचा हो सकता है इसमें कोई बात मेरी मालूमात में इजाफा करने वाली हो। वो कितनी पुरानी रही होगी? फरीदी ने पूछा।
ठहरो, मैं अभी दिखाता हूं।
बेकार, क्योंकि अब वो यहां मौजूद नहीं है।
क्या क्या मतलब?
मेरा ख्याल गलत था। दरअसल वो किताब ही आपके सेक्रेटरी की मौत के लिए जिम्मेदार है। फरीदी तारिक की तरफ देखने लगा। वो फरीदी को घूर रहा था। आंखें मिलते ही वो दूसरी तरफ देखने लगा।
मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा।
आप कह रहे थे कि वो किताब इस इमारत के बारे में थी? फरीदी ने नवाब साहब के सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा। क्या आप अंदाजे से भी उसकी तारीख मुझे नहीं बता सकते?
वो किताब 300 साल पुरानी रही होगी।
300 साल? मगर ये इमारत तो नए तर्ज की है।
जिस हिस्से में आप बैठे हैं उसे बने हुए ज्यादा दिन नहीं हुए। पुरानी इमारत तो कभी की खत्म हो चुकी है। उसके कुछ खंडहरों का हिस्सा अभी तक बाकी है।
I see। तब तो मैं 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ कि सेक्रेटरी की मौत किताब की ही वजह से हुई है।
मगर कैसे?
इस किताब में उस इमारत के बारे में कोई गहरा राज लिखा था। यही वजह है कि वो निडर होकर रात को भी लाइब्रेरी में बैठा रहा, जबकि दूसरे अपने कमरों से निकलने की हिम्मत तक नहीं कर सकते थे। क्या बता सकते हैं कि उस वक्त और कौन कौन मौजूद था जब आपने उसे किताब तलाश करने की हिदायत दी थी?
शायद मेरे और तारिक के अलावा और कोई भी नहीं।
I see। फरीदी ने सिर हिलाते हुए कहा।
मगर वो राज क्या हो सकता है?
वो राज? अगर वो राज आपको मालूम हो जाता तो आपके घर में होने वाले हादसे आपकी नजरों में खेलकूद से ज्यादा की हैसियत ना रखते।
यानी?
अभी फिलहाल मैं इस चीज पर ज्यादा रोशनी नहीं डाल सकता, लेकिन आप इत्मीनान रखिए, ये सब हकीकत में खेल तमाशे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। नवाब साहब खामोश हो गए, लेकिन उनकी आंखों की बेचैनी जाहिर हो रही थी। चलिए मैं आप लोगों को आपके कमरे दिखा दूं, गजाला ने उठते हुए कहा।
मेरी समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं।
आप ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए ना, फरीदी ने मुस्कुरा कर कहा।
मुझे तुम्हारी बात से ऐसी ही उम्मीद है, खुदा हमारी परेशानियां दूर करे,
नवाब साहब ने कहा और बाहर चले गए। क्या राज है उस किताब के अंदर जिसके कारण नवाब साहब के सेक्रेटरी का मर्डर हो गया? ऐसा क्या राज छिपा है उस किताब में? जानने के लिए सुनिए अगला भाग।